मेरे आत्मीय मित्रों नमस्कार। आज 23 जून 2020 है और आज के इस AFEIS के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, फिलहाल हम लोग डिप्रेशन के कारणों को जानने की कोशिश कर रहे हैं और उसके तहत कल मैंने आप सबसे अधीरता के बारे में बातें की थी, जल्दबाजी के बारे में बातें की थी और आज अप्रत्यक्ष रूप से उसी से जुड़े हुए किंतु एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण पर मैं बात करने जा रहा हूं, जो आज लगभग हमारी जीवन पद्धति का अभिशाप तक बन चुका है। और दोस्तों, उसका नाम है अकेलापन, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं लोनलीनेस, अकेलापन। आइए इसे थोड़ा सा जानते और समझते हैं। दोस्तों, दो अलग अलग शब्द हैं, आपको ध्यान रखना होगा। अकेला अलग है और अकेलापन अलग है, दोनों बिल्कुल एक नहीं है। हो सकता है कि मैं अकेला हूं लेकिन मुझे अकेलेपन का एहसास न होता हो। ये भी हो सकता है कि मैं बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ में रह रहा हूं लेकिन उस भीड़ में भी मुझे अकेलेपन का एहसास हो रहा है। उदाहरण के तौर पर आप देखिए, जब आप गांव छोड़कर के शहर जाते हैं तो शहर से चूंकि आप मैच नहीं कर पाते तो वहां आपको अजनबियतपन का एहसास होता है। इसे ही हम कह रहे हैं अकेलापन, है ना। आपके अंदर कोई भी ऐसी कुंठा होती है या यूं कह लीजिए कि उपेक्षा की भावना होती है, उदासी का सबब होता है कि आप लोगों से मिलना जुलना नहीं चाहते। हो सकता है कि आपके मन में संकोच का भी भाव हो, भय का भी भाव हो, हिचक हो कि मैं अगर इनसे जाकर के मिलूंगा, बात करूंगा तो पता नहीं वो मुझे क्या कहेंगे, क्या समझेंगे, मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो फिर ऐसे लोग सामान्यतः समाज से दूर अलग थलग रहना ही पसंद करते हैं, यानी कि वो सोशलाइजेशन में विश्वास नहीं रख पाते। तो दोस्तों, अब वहां भीड़ है, बाजार है, लेकिन चूंकि आप वहां किसी को जानते नहीं हैं, आप किसी से कोई बात कह नहीं सकते, आपको किसी पर भरोसा नहीं है कि यह मेरी जरूरत पड़ने पर मदद कर देगा, तो भीड़ में भी आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। याद रखिए, जब महसूस करते हैं तब वह अकेलापन है और अगर आप महसूस नहीं कर रहे हैं तो आप अकेले भी हैं लेकिन अकेलापन नहीं है। इसे आप एक अच्छा सा शब्द दे सकते हैं, एकांत। एकांत, तब आप एकांत में हैं और जो एकांत होता है वो बहुत ज्यादा रचनात्मक होता है। देखिए, जब हम ध्यान की बात करते हैं तो वो क्या है, आप अपने विचारों तक को छोड़ करके बिल्कुल अकेले हो जाइए, बिल्कुल अपने आप में डूब जाइए, वह एकांत होता है। मेरी समझ से यह बात आपको स्पष्ट हो गई होगी। इसीलिए बाय द वे, अगर हम अकेले रह रहे हैं, हम अकेले हैं या यूं कह लीजिए कि एक दो लोग ही हमारे साथ हैं, तो जरूरी नहीं कि हम अकेलेपन को महसूस भी करेंगे। हम अपने आप को बकायदे रचनात्मक बना सकते हैं। ऐसे बहुत से साधन हैं कि हम दूसरों से जुड़ करके अपने इस अकेलेपन के अभिशाप से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। दोस्तों, दुर्भाग्य की बात यह है कि अब हम जिस समाज में रह रहे हैं और भविष्य का जो समाज हमें दिखाई देता है वो बहुत डरावना सा है। डरावना सा इस मायने में कि वहां ज्यादा आशंकाएं अब इस बात की हो रही हैं कि व्यक्ति समुदाय से हट जाएगा, कट जाएगा। और देखिए, स्वाभाविक बात है कि जब हम शुरुआत से ही समुदाय से कट जाएंगे तो मान करके चलिए कि फिर एक ऐसा दौर आएगा कि हम न चाहते हुए भी अकेलेपन के शिकार होंगे। उदाहरण के तौर पर, मैं संयुक्त परिवार में रहा हुआ हूं, मैं बहुत अच्छे से उसको महसूस कर सकता हूं कि उस समय अकेलेपन जैसी कोई चीज होती होगी, जानते ही नहीं थे, ढेर सारे लोग हैं, उनसे बातचीत हो रही है, हम आप बच्चे हैं, आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, तो उसमें पेशेंस की भावना भी आ जाती थी और फिर बकायदे बातचीत हो रही है, मिल रहे हैं। आप यूं कह लीजिए कि घर में जैसा लगता था जैसे कि हर समय एक उत्सव सा मन रहा है, हर सदस्य के साथ ये होता था। और फिर आप सोचिए कि कितना सपोर्ट सिस्टम महसूस होता था कि जैसे ही आपको कोई जरूरत पड़ती थी पूरा परिवार आपके लिए खड़ा होता था, आप बीमार पड़ते थे पूरा परिवार आपको घेर कर खड़ा हो जाता था। तो ये जो सपोर्ट सिस्टम है, जब तक आपको भरोसा है कि मेरे साथ सपोर्ट सिस्टम है, आप अकेलापन महसूस नहीं कर सकते। तो दोस्तों, अब संयुक्त परिवार टूटते चले जा रहे हैं। नौकरी करने के लिए अपने काम की तलाश में हम पता नहीं कहां से कहां दूर दराज जा रहे हैं और दूर दराज जाने के बाद वहां हम अपने को अजनबी महसूस कर रहे हैं। अजनबी, हमें लगता ही नहीं कि ये लोग हमारे अपने लोग हैं। ये बात अलग है कि उस न लगने के पीछे हमारी अपनी कमजोरियां अपने कारण हो सकते हैं, अपनी सीमाएं हो सकती हैं, क्योंकि मैं ये मान करके चलता हूं कि आप किसी से भी मिलिए जुलिए अच्छे से बात कीजिए तो आपको वहां तक तो वो स्पेस दे ही देंगे कि आपके अकेलेपन को वो दूर कर सके। ठीक है, आपको बिल्कुल अपने में एकदम से शामिल नहीं करेंगे क्योंकि आप उस समुदाय के नहीं हैं, और भारत में जो सामुदायिक चेतना है, जातिगत चेतना है, वो बहुत ही ज्यादा गहरी है, लेकिन फिर भी आपको उतना स्पेस मिल जाएगा कि वो आपके अकेलेपन की जो खराश है, जो चुभन है, उससे मुक्ति दिला सके। और एक भयानक संकट जो लगातार आप कह लीजिए विषैले नाग के फन की तरह हमारी सोसाइटी को लपेटता चला जा रहा है दोस्तों, मुझे लगता है वह हाथ में हमारे आए हुए वह छोटा सा इंस्ट्रूमेंट जिसे हम स्मार्टफोन कहते हैं, दुर्भाग्य से भले ही वो अपने आप में स्मार्ट हो लेकिन हमें तो बहुत लचर बना रहा है। मैं देखता हूं छोटे छोटे बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन है, अपने कमरों में बंद है और बस उसके साथ लगे हुए हैं। पहले हम लोग जब ट्रेवल करते थे और रेलवे स्टेशन पे जा रहे हैं या एयरपोर्ट पर जा रहे हैं, लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, उत्साह मना रहे हैं, वहां जो स्टॉल से वहां खड़े होकर के चाय पी रहे हैं या किताबों के स्टॉल से वहां जाकर के पत्रिकाएं उलट रहे हैं। ट्रेन में भी जब आप चल रहे हैं तो किसी के हाथ में किताबें हैं, किसी के हाथ में पत्रिकाएं हैं, किसी के हाथ में अखबार हैं, लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, पूछते हैं कि भाई आप कहां से आए हो और कहां जाना है, बातचीत शुरू हो जाती है। आज अगर घर के तीन सदस्य जा रहे हैं तो उनमें भी आपस में बातचीत नहीं होती क्योंकि तीनों के हाथ में मूर्ख बनाने वाला वह स्मार्टफोन है जो अपने आप को दुनिया की सूचनाओं का भंडार कहता है, आप उसके साथ लगे हुए हैं। तो टेक्नोलॉजी है, जब हम नौकरी करने जाते हैं तो वहां कंप्यूटर के साथ बैठे हुए हैं, वहां भी हमारे हाथ में स्मार्टफोन है, वहां हमारे लोग हैं लेकिन अपने लोगों के साथ बातचीत नहीं है। तो दोस्तों ये जो टेक्नोलॉजी है इसने हमें भयानक रूप से अकेला बना दिया है, प्रकृति के साथ हमारा संपर्क टूट ही गया है। अदरवाइज जब आप प्रकृति में अकेले भी रहेंगे, आप कभी महसूस करेंगे, जाइए कभी इसको महसूस करने के लिए जाइए, आप अकेला महसूस नहीं करेंगे। प्रकृति आपसे बात नहीं कर रही है, आपसे हाथ नहीं मिला रही है, आपके गले नहीं मिल रही है, लेकिन इसके बाद भी आपको पता नहीं वहां एक जीवंतता का एहसास होगा क्योंकि वहां प्रकृति की बिल्कुल जीवंत ऊर्जा जिसे आप सकारात्मक ऊर्जा कहेंगे वो काम कर रही है। पत्रों की दुनिया खत्म हो गई, पत्र है ही नहीं, पत्र तो अतीत के दस्तावेज हैं। मेरे पास पत्रों की एक बहुत बड़ी फाइल है और मैं जब अपने अतीत को जीना चाहता हूं तो उसमें से किसी भी पत्र को निकाल करके जब देखता हूं तो महसूस होता है कि मैं उस युग में चला गया हूं, मैं अपने उन्हीं मित्रों के साथ हूं, परिवार के उन सदस्यों के साथ हूं। पत्रों की दुनिया गायब, प्रकृति गायब, संयुक्त परिवार गायब, हाथ में स्मार्टफोन आ गया है, क्या होगा? जीवन से उत्सव गायब। आप लोक उत्सव को देखिए, सारे के सारे लोक उत्सव सामूहिकता के उत्सव हैं। मुझे याद आ रहा है कि शंकर दयाल शर्मा जी बताया करते थे भोपाल में एक कल्चर था उस समय, पटिया का कल्चर। पटिया का कल्चर का मतलब होता है कि घर के बाहर, सभी घरों के बाहर एक बेंच जैसी, दीवाल से सटी हुई पटिया जैसी लगी रहती थी और रात में सब खाना पीना खा करके वहां आते थे और लोग इकट्ठे होकर के गपशप मारते थे और घंटों दो घंटे बीत जाते थे गपशप मारते हुए। आज के समय में आपको लगेगा कि ये अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ये कितने मूर्ख लोग हैं, इनके पास कोई काम नहीं है, इनके जीवन में कोई एम्बिशन नहीं है, ये सब अशिक्षित हैं, गंवार हैं, बिना पढ़े लिखे लोग हैं, जबकि ये सबसे बड़ा जीवन का एक ऐसा आधार है जो हमें डिप्रेशन से बचाता है, हमारे अकेलेपन को दूर करता है, हमारे अंदर की घुटन को बाहर लाता है। ठीक उसी तरह से जैसे कि आप एक बंद कमरे को अगर आप अचानक खोलेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे थोड़ी देर के बाद ही वह जो बंद कमरा था, जो घुटन से भरा हुआ था, जिसमें दुर्गंध आ रही थी, जो गर्मी से तप रहा था, खुलते ही थोड़ी देर के बाद कितना सामान्य सा लगने लगता है, सुकून देने वाला बनता है, खिड़कियों से रोशनी आने लगती है, ताजी हवाएं आती हैं और वो सारी घुटन किस तरीके से ताजगी में तब्दील हो जाती है। तो दोस्तों क्या हमारे अंदर के घुटते हुए कमरे को इस तरह के किसी खिड़की की, किसी दरवाजे की जरूरत नहीं है? दोस्तों उसकी बहुत निहायत जरूरत है। तो फ्रेंड्स आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही, अब आप सबसे अनुमति चाहूंगा, नमस्कार।